नमस्कार, आज 5 अगस्त 2016 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का भी, जिन्होंने एकेडमी के अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये इन साथी का नाम है बाबू राम प्रजापति, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। तो बाबू राम, मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी स्वागत क्रम में और एकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले क्लास के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, और वह सूचना आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर भी हो सकता है, खुशखबरी भी हो सकती है। और वह यह दोस्तों कि अभी जो एकेडमी की 15 दिन की क्लासेस जो होने जा रही हैं, आपको मालूम है कि 25 सितंबर 15 दिन की क्लासेस हैं, जिसमें आप यूं कह लीजिए कि लगभग 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें सूचना यह है कि इसके लिए स्टूडेंट्स ने जो रजिस्ट्रेशन कराए थे, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम वगैरह के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी सीटें खाली हैं, यानी कि जो सितंबर का बैच जो अभी शुरू होने जा रहा है 25 सितंबर को, उसकी कुछ सीटें अभी खाली हो गई हैं। तो यदि आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट सितंबर के बैच के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको एक मोबाइल नंबर बताता हूं, आप उस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, मोबाइल नंबर है 9754045091। मैं रिपीट कर रहा हूं, मोबाइल नंबर 9754045091। दोस्तों, आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, चीजों की जानकारी ले सकते हैं। एक बात मैं जो अपनी ओर से आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये कि मित्रों, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो उसमें आपको जितना संभव हो सके जल्दी से जल्दी क्लासेस कर लेनी चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है मित्रों कि खासकर ये जो 15 दिन की क्लासेस हैं, ये आपको तैयारी करने का तरीका बताने वाली ही क्लासेस हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए यानी सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयारी करनी चाहिए। और सिविल सर्विस की तैयारी का यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि आपको उसका तरीका मालूम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों, बट नेचुरल है कि आप इस काम को जितनी जल्दी कर लेंगे, तैयारी करने के तरीके को जितनी जल्दी सीख लेंगे, आप उतनी ही जल्दी अपनी तैयारी करने को सही दिशा दे सकेंगे। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के मेल भी आते हैं, जैसे कल ही एक मेल आया कि सर, मैं 2018 में एपियर होना चाहता हूं, तो मुझे कब आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसे प्रश्न जिन भी स्टूडेंट्स के मन में हो, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही और एक ही उत्तर है, जितनी जल्दी संभव हो सके। और वैसे भी फ्रेंड्स, जो हमने यहां 15 दिन की क्लासेस जो डिजाइन की हैं, इसमें जो एडमिशन लेने का जो की जो न्यूनतम योग्यता है कह लीजिए, वो कॉलेज गोइंग, यानी कि अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं तो आप यहां एडमिशन ले सकते हैं। उसका कारण यह है कि कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते इतनी मेच्योरिटी आ जाती है, हम लोग मानकर चलते हैं कि फिर वो यहां की क्लास की बताई गई चीजों को बहुत अच्छे से एडॉप्ट कर सकेंगे। तो मित्रों, आप में से जिसके लिए भी संभव हो सकता है कि वह सितंबर अक्टूबर की क्लासेस को ज्वाइन करे, उन्हें चाहिए कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपने इस काम को अंजाम दे देना चाहिए। तो मित्रों, आज 5 अगस्त तो है ही, साथ ही दिन भी शुक्रवार का है, तो शुक्रवार के दिन होने के नाते कुछ सूचनाएं मुझे आप लोगों को और देनी हैं। पहली बात तो यही, आप जानते हैं कि सैटरडे संडे को डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आता है, इस सप्ताह का यह आखिरी डेली ऑडियो गाइडेंस है मित्रों, लेकिन जहां तक प्रेस क्लिपिंग्स का सवाल है, कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स उसी तरीके से अवेलेबल होंगे जैसे कि होते रहे हैं। साथ ही कल आपको कुछ एडिशनल चीजें भी मिलती हैं जिनमें योजना और कुरुक्षेत्र के एक एक आर्टिकल्स होते हैं, और ये जो आर्टिकल्स होते हैं योजना हिंदी और इंग्लिश के, इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी हिंदी और इंग्लिश के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। साथ ही एक वीकली क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है वह भी आपको अवेलेबल होगा, और जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो हमारे फर्स्ट टू फोर्थ बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्लस स्पेशल नोट्स जो भी जिसकी जैसी जरूरत समझी जाएगी, जिनके उनके लिए क्या उपयोगी है, जिस तरह से महसूस किया जाएगा वैसा उनको भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स लाइफ मैनेजमेंट पर, और डेफिनेटली मेरा आज का जो लाइफ मैनेजमेंट है एक बार फिर से मेरे अपने उन स्टूडेंट्स को समर्पित है जो अभी परसों यानी कि संडे के सिविल सर्विस के प्री एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो मित्रों सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी नौजवान प्यारे साथियों को आप सब की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो संडे को प्री एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे इस ऑडियो को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, सुनने वाले भी मेरे प्रिय श्रोता हैं और नहीं सुनने वाले भी मेरे उतने ही प्रिय श्रोता हैं। और जहां तक गुड विशेष की बात है मित्रों, उसको पहुंचने और पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, क्वांटम फिजिक्स अपना कमाल करता है और वो शुभकामनाएं उन तक पहुंच जाती हैं। तो मित्रों हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जिसके लिए इतने दिनों तक मेहनत की है और जिस डेट की आपको प्रतीक्षा थी वो डेट भी आने वाली है, उसमें आपको अपने मन मुताबिक सफलता मिले। मित्रों खासकर मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, कुछ बातें तो मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं जिसमें मनोविज्ञान की भी बातें थी, लेकिन अब जबकि कुछ ही घंटे रह गए हैं, अब हम घंटों में ही काउंट करते हैं, अब आपको अपने मनोविज्ञान को थोड़ा और समेटना चाहिए। समेटना चाहिए कहने का मतलब है कि और कंसंट्रेट करना चाहिए, फैलाव को कम करके बिंदु की दिशा में यात्रा करनी चाहिए। और वो यात्रा क्या हो सकती है, वो बिंदु क्या हो सकता है मित्रों? बिंदु मुझे लगता है कि ये हो सकता है, अब आपको मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, और जबरदस्ती नहीं बल्कि पूरी गहराई से स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वही सब कुछ है। भले ही आपको लग रहा हो कि आपके पास थोड़ा है, ठीक है थोड़ा ही है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ वही है, क्योंकि अब तो आपके पास जो है, जो कुछ भी आपको करना है उसी से ही करना है, यानी आपके लिए वही सब कुछ है। और जिंदगी में यही तो होता है मित्रों, मेरी जो पूंजी है थोड़ी बहुत वही मेरे लिए सब कुछ है। ये बात अलग है कि मेरी पूंजी अगर मैं अंबानी जी को बताऊं तो वो सुनना भी पसंद न करें, वो कहेंगे कि तुम्हारी जितनी पूंजी तो मेरे यहां जो चौकीदार है ना, दरबान है, उसकी है, लेकिन उनके लिए वो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो वही सब कुछ है। तो दोस्तों आप जितना भी जानते हैं, जितना भी आपने पढ़ लिया है, अब आप उस पर पूरा विश्वास कीजिए, उसको अपना सर्वस्व मानिए, और विश्वास ही नहीं कीजिए बल्कि उस पर गर्व भी कीजिए कि हां मैंने इसे हासिल किया है, भले ही मेरे पास थोड़ी पूंजी है लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने इसे अर्न किया है, किसी ने मुझे दिया इसे नहीं है। तो मित्रों आपके दिमाग में देखेंगे कि एक विचित्र किस्म की शांति और विचित्र किस्म का ठोसपन और एक विचित्र किस्म का संतुलन धीरे धीरे आ जाएगा। भले ही तुरंत आप ऐसा महसूस न करें लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठते तक डेफिनेटली यह परिवर्तन आप महसूस करेंगे। दोस्तों हो सकता है कि मेरी बात पर आपको सीधे सीधे यकीन न हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछें, यानी कि जो भी कम से कम 45-50 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, उनके पास जीवन का एक लंबा अनुभव है, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि जीवन में आपको जो कुछ भी हासिल होता है, जो भी उपलब्धियां आप प्राप्त करते हैं, नो डाउट उसमें ज्ञान की अपनी भूमिका होती है, आपके अपने मेहनत की भी भूमिका होती है, इनके बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इनकी जो भूमिकाएं हैं दोस्तों बहुत सीमित होती हैं, यानी कि यही सब कुछ नहीं होते हैं। चाहे आप कितने भी ज्ञानी बन जाएं, चाहे आप कितने घंटे घंटे कितने साल तक आप मेहनत कर लें, एक लिमिटेशन है उसकी। तो सफलता अपने कंप्लीट फॉर्म में, अपनी संपूर्णता में मिले कैसे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो सच पूछे तो ज्यादातर यंग एज में, जो उम्र अभी आप सबकी है, वो समझ में नहीं आती। मित्रों उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी जब उस उम्र में था तो यही लगता था कि ज्ञान सर्वोपरि है और मेहनत सर्वोपरि है, और अगर हम इन दोनों को हासिल कर लेते हैं तो फिर हम कुछ भी हासिल कर लेते हैं। ये गलत फहमी थी, लेकिन पूरी गलत फहमी भी नहीं थी, उसमें थोड़ी सी सही फहमी भी थी। तो कुछ ना कुछ हो भी जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको अच्छे से समझ लिया जाए तो दोस्तों चमत्कार हो सकता है। नो डाउट ज्ञान और मेहनत के दम पर काफी कुछ हो जाता है, लेकिन इसी के साथ अगर सत्य को शामिल कर दिया जाए तो चमत्कार हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है मित्रों। तो वो क्या है जो हम मिस करते हैं, जिसको हमें शामिल करना है मित्रों? वह होता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी जीवन पद्धति, यानी कि हम खुद। ज्ञान हम बाहर से अर्जित करते हैं, परिश्रम हमारा शरीर करता है। लेकिन याद रखिए कि यह जरूरी नहीं कि ये दोनों चीजें हमारे व्यक्तित्व में बदलाव ला दें, बल्कि ज्ञान तो कहीं कहीं ज्यादातर ज्यादातर मामलों में हमें अहमवादी बना देता है, एरोगेंट बना देता है, एरोगेंस बना देता है। हम दूसरे को फिर कुछ समझते ही नहीं, लगता है कि हम ही सब कुछ है, उल्टा हो जाता है। और यही बात कहीं कहीं परिश्रम के साथ भी होती है, लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और क्या चाहिए, क्यों नहीं मैं सफल होऊंगा जब मैंने इतनी मेहनत की है। दोस्तों वहां हम सत्य से चूक जाते हैं, ये पूरा सत्य नहीं है। ज्ञान और परिश्रम, इन दोनों को भी जो सहारा चाहिए, क्योंकि ये दोनों किसके माध्यम से ट्रांसमिट होंगे, दूसरों तक पहुंचेंगे कैसे? ज्ञान आपके पास है, जो परिश्रम किया है, तो सच यही है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए ही आपने परिश्रम किया है, तो वो भी ज्ञान ही है, तो वो तो आपके पास ही है ना, बस खत्म। अब आपको इसे दूसरों तक पहुंचाना है, ट्रांसमिट करना है। आप एक बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा लीजिए और उसमें आप 1,00,000 मेगावाट बिजली पैदा कर लीजिए, लेकिन जब तक आप इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे नहीं तो छोटा सा बल्ब भी नहीं जलेगा। कौन क्या जानेगा आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्लांट के बारे में? करते रहिए आप 1,00,000 मेगावाट बिजली उत्पादन, क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं हो जाएगा। तो आपको ट्रांसमिशन चाहिए इसका, दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम चाहिए। मित्रों यही तो है आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपका मनोविज्ञान, कि आप उसे दूसरों तक पहुंचाते कैसे हैं? वहां पर आप होते हैं, क्योंकि पहुंचाने के माध्यम आप हैं। ज्ञान तो पहुंचने वाला चीज वाली चीज है, वस्तु है, ज्ञान माध्यम थोड़ी है, वो तो वस्तु है जो आपको पहुंचानी है। और यही दोस्तों आपको प्री एग्जाम में करना है। आपने पढ़ लिया है, आपने मेहनत कर ली है, तो वो वस्तु आपके दिमाग में है, अब आपको कॉपी में उसका प्रमाण देना है, कॉपी में उसे उतारना है, पहुंचाना है। अब उसे आप कैसे पहुंचाएंगे? यह काम आपका मनोविज्ञान करेगा। उस समय आप कितने मानसिक संतुलन की स्थिति में आप अपने को रख पाते हैं, कितना आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यहां तक कि आपको लगेगा कि अरे बाप रे, शुरू के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इसमें तो कोई भी नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है दूसरों के साथ भी यही दुर्घटना घट रही हो, तो हम बराबर हो जाएंगे। और अभी नहीं बन रहे हैं, हो सकता है आगे के बने, हु नोस, भविष्य को हमने नहीं देखा है, देखते हैं। लेकिन संतुलन के साथ तो चलिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी उस संतुलन को बनाए रखने की, उस व्यक्तित्व को संजोए रखने की और उसे विकसित करते चले जाने की। तो मित्रों आपने जो कुछ भी आप कर सकते थे आपने कर लिया है, अब आप अपने को समेटिए, अपने व्यक्तित्व को वजनी बनाइए, सब जो कुछ भी आपके पास है उसे सब कुछ मान करके अपने को अकिंचन महसूस मत कीजिए, अपने को गरीब महसूस मत कीजिए, अपने को भरापूरा महसूस कीजिए, और अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को अधिक से अधिक स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए, ताकि वहां जाकर के आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। एक अनुरोध मेरा आप सबसे जरूर है कि आप संडे को एग्जाम से फ्री हो जाएंगे। मित्रों, मेरे दो अनुरोध हैं। पहला अनुरोध यह है कि एग्जाम देने के बाद आप अपने अनुभवों को लिखें, बेहतर होगा कि संडे की रात में ही लिख लें, और यदि किसी वजह से नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मंडे को इस काम को पूरा कर लें और बहुत विस्तार के साथ आप अपने अनुभवों को नोट करें। उसके जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें भी नोट करें, जो नेगेटिव हैं उन्हें भी नोट करें, देखें कि आप कितने विस्तार के साथ लिख सकते हैं। और इस लिखने को भी आप एक प्रैक्टिस मान लीजिए जो आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आप जरूरत होती है। और दूसरा जो मेरा अनुरोध है, फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप जब से भी डेली ऑडियो गाइडेंस को सुन रहे हैं, डेली ऑडियो गाइडेंस के अंतर्गत मैं आपसे न्यूज और न्यूज़पेपर की एनालिसिस आपको करके बताता हूं, आपको न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, आपको योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स भी दिए जाते हैं, और अब हमने एक करेंट कंटेंट के अंतर्गत जो इंग्लिश के अखबार होते हैं जो इंपॉर्टेंट उनके आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स हैं वो भी अब हम हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये काफी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही हमने 4 आपको मॉक टेस्ट भी दिए हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 15 दिन की यहां की क्लास भी अटेंड करके गए हुए हैं। तो ये सारा कुछ आप कह लीजिए कि एकेडमी फॉर एक्सीलेंस आपके लिए उसने किया है। तो मैं ये आपसे जरूर चाहूंगा कि आपके इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को देने में एकेडमी की क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है। आपको चाहे वो नॉलेज का स्तर हो, चाहे कॉन्फिडेंस का स्तर हो, पर्सनालिटी का स्तर हो, पावर ऑफ असेसमेंट की बात हो, कॉमन सेंस डेवलप करने की बात हो, सब्जेक्ट के बेसिक्स को समझने से जो आपको फायदा मिला हो उसकी बात हो, मतलब जो भी जिस तरीके का लाभ आपको एकेडमी से मिला है, मैं बहुत आभारी रहूंगा यदि आप उसके बारे में मुझे मेल द्वारा सूचित कर सकेंगे। तो मित्रों, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खुश होना चाहता हूं या हम अपनी और अपनी टीम की पीठ थपथपाना चाहते हैं, चाहते भी हैं तो कोई बुराई नहीं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम आप भी चाहते हैं और हमारी पूरी टीम इसके लिए मेहनत कर रही है तो बट नेचुरल कि परिणाम हम भी चाहते हैं जो आपके माध्यम से मिलेगा और आप ही बताएंगे हमें तभी पता भी चलेगा। लेकिन मित्रों, उससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप हमें बताएंगे तब हमें यह पता लग पाएगा कि हमारी दिशा ठीक है कि नहीं है, अदरवाइज कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भ्रम में हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम बड़ा सही काम कर रहे हैं, जबकि न तो वो बड़ा है, न महत्वपूर्ण है और न वो सही ही है, क्योंकि अगर वो आपके काम नहीं आ रहा है, उसकी कोई भूमिका नहीं है आपके आपको सिविल सर्वेंट बनाने में, तो फिर बेकार है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो यही है कि सिविल सर्वेंट बनने की जो आपकी कोशिश है उसमें हम थोड़ी सी मदद कर सके। तो मित्रों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एग्जाम देने के बाद यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं एकेडमी फॉर एक्सीलेंस से, तो जरा पॉइंट वाइज सूचित करने की जरा कष्ट करें कि आपको एकेडमी के इन कोशिशों से कितनी मदद मिली है। इससे मित्रों हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी और फिर हम आपके लिए ही और अच्छा करने की स्थिति में आ सकेंगे। तो अंततः आप हमारी मदद करके कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, फ्रेंड्स, अपनी भी मदद कर रहे होंगे और अपने ही साथ साथ अपने जैसे दूसरे साथियों की भी मदद कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में आज बस इतना ही, आज थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जरूरी थी ये बातें आपसे करनी, क्योंकि साल भर या 2 साल की जो आप मेहनत है अब आप उसके अंजाम तक पहुंचने जा रहे हैं तो उसके लिए इतने लिबर्टी तो ली जानी चाहिए और मुझे लगता है कि इसकी इजाजत आप मुझे देंगे। मित्रों, अब हम आते हैं कल के AIR न्यूज पर। 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें थी, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर है, उस पर मैं भी बाद में बात करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है मित्रों, 2 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो दोनों कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। पहली खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो दिल्ली राज्य है उसका जो मुख्य प्रशासक है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, वह उपराज्यपाल है, वह प्रशासनिक प्रमुख है, उपराज्यपाल है। आप देख रहे हैं कि जब से आप पार्टी की सरकार बनी है और अरविंद केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री हैं, तब से लगातार 2 स्तरों पर दिल्ली सरकार की लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई उनकी सीधे सीधे केंद्र सरकार के साथ होती है, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी की बात आती है या गृह मंत्री की हमारे राजनाथ सिंह जी की बात आती है। गृह मंत्री की बात इसलिए क्योंकि जो इस तरह के जो स्टेट है, चाहे वो संघ शासित प्रदेश हो या दिल्ली जैसे जो राज्य हैं, तो मूलतः वो डायरेक्ट यूं कह सकते हैं कि गृह मंत्री के प्रशासन में ज्यादा होते हैं और प्रधानमंत्री तो अल्टीमेटली होते ही है। तो या तो वो लक्ष्य में होते हैं या फिर जो उपराज्यपाल हैं वे लक्ष्य में होते हैं और लगातार इनके साथ एक तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं और स्टेटमेंट इस तरीके के आते रहते हैं कि काम नहीं करने दिया जाता है, अधिकारों को लेकर के संघर्ष हो जाता है, दिल्ली सरकार कोई आदेश पारित करती है उसे उपराज्यपाल निरस्त कर देते हैं, फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है। तो ये सारे के सारे इस तरह के तनावपूर्ण संबंध काफी समय से चल रहे हैं। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि जो उपराज्यपाल है वही प्रशासनिक प्रमुख है। हालांकि आप पार्टी ने कहा है कि वह हाई कोर्ट के इस डिसीजन को के खिलाफ अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन चलिए वो जो कुछ भी होगा, जब भी होगा, फिर जो निर्णय आएंगे डेफिनेटली, लेकिन जो निर्णय आएगा वो एक कानून की तरह कह लीजिए कि स्थापित हो जाएगा। मित्रों, ये जो सच पूछे तो जो लड़ाई है ये दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से भी जुड़ी हुई लड़ाई है। अब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए या कितना दिया जाना चाहिए, इस बारे में तो चर्चा करने का अभी वक्त नहीं है और न ये सही अवसर है और सही माध्यम भी नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा, जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट, थर्ड बैच के बारे में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि उनके लिए एक स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया गया था, स्पेशल ऑडियो गाइडेंस, जिसमें दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में जो भी स्थितियां हो सकती हैं डिटेल में उसकी बात की गई है। तो यदि आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं, तो उससे आपको काफी बातें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा जो कोर्ट का डिसीजन है मित्रों, वो ये खासकर गुजरात में जो 10% आरक्षण जो दिया था गुजरात सरकार ने, खासकर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से गरीब लोगों को 10% आरक्षण का प्रोविजन किया था, उसको हाई कोर्ट में कोर्ट में चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने बट नेचुरल है कि उसको रिजेक्ट कर दिया, गलत माना, असंवैधानिक करार दिया। मित्रों, मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर कट इस बात को कह चुका है कि जो आरक्षण की सीमा है किसी भी हालत में 50% से अधिक नहीं हो सकती, ये उसने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है। अभी जो टोटल आरक्षण है 49.5 के करीब पहुंच चुकी है, तमिलनाडु में डेफिनेटली इससे भी ज्यादा है, लेकिन उसके लिए अलग से संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था तो तमिलनाडु में वो ज्यादा पहुंच गया है, वो एक अपवाद है और ये उसमें मेंशन किया गया है कि तमिलनाडु की ये जो व्यवस्था है ये अपवाद स्वरूप है, इसे कोट नहीं किया जाएगा कि जब वहां है तो और दूसरी जगह भी ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके बाद भी आप देखिए कि बीच बीच में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, गुजरात ने किया, इससे पहले हरियाणा और राजस्थान वो भी इसी तरह के कदम उठा चुके हैं या उठाने वाले हैं या वायदा कर देते हैं जो आरक्षण की मांग करते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके, हालांकि जो वायदा करने वाले जो राजनेता हैं ऐसा नहीं है कि वो उनको सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट मालूम नहीं है, उनको बहुत अच्छे से मालूम होता है कि इसका क्या होने जा रहा है, लेकिन उस समय स्थिति को संभालने के लिए या यूं कह लीजिए कि ये एक राजनीति है या लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक करने के लिए लगता है कि भैया अभी तो कहो, बाद में तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप इसे रिजेक्ट कर देगी तो उस समय स्थिति संभल जाती है, या जो भी हो उनके दिमाग में उस समय। तो मित्रों, ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी, कोट करने के लिए अच्छा एक उदाहरण है। अगर आरक्षण से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम करंट में से कोट करें, जो उससे जुड़ी हुई जो बिल्कुल नवीनतम घटनाएं हों। फिर मित्रों, रियो ओलंपिक कल से शुरू होने जा रहा है, आज से मतलब 5 अगस्त हो गया, आज से रियो ओलंपिक शुरू होने जा रहा है। भारत ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा, 120 खिलाड़ियों का, इतने खिलाड़ी कभी नहीं गए और आप देख रहे हैं कि भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन और विश्व स्तर पर धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि जब पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे, जब ये खेल का जो कुंभ है, जो मेला है, ये संपन्न हो जाएगा, तब फिर एक एनालिटिकल सिचुएशन बनेगी कि हमारा कुल प्रदर्शन कैसा रहा, उस समय फिर हम उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन ओलंपिक गेम एक ऐसा गेम होता है मित्रों जिसमें सबकी रुचि होती है, तो आप उस तरह से इसका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस पर। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस का मामला अभी काफी समय तक चलेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कोशिश होगी कि हम 1 अप्रैल 2017 से इसे लागू कर दें, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट हैं उनको नहीं लगता है कि इतनी आसानी से इतनी जल्दी इसे लागू किया जा सकेगा, क्योंकि अभी तो 1 महीने के अंदर राज्य इसे वेरीफाई करेंगे, मतलब राज्य विधानसभाओं से पारित होना है। चलिए, वहां से तो पारित होता रहेगा, लेकिन काउंसिल अभी है, काउंसिल में फिर वो टैक्सेस के दर और दुनिया भर की चीजें होंगी, क्योंकि 3 तरह की चीजें हैं उसमें, स्टेट टैक्सेस हैं और सेंट्रल टैक्सेस हैं और फिर इंटर स्टेट टैक्सेस हैं, उन सबका निर्धारण करना, आपस में बातचीत करना, फिर राज्यों के बीच खींचतानी होगी, फिर उसमें केंद्र और राज्यों के बीच होगा, तो उतना आसान नहीं है जिसकी वो हमारे वित्त मंत्री जी ने इशारा भी कर दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस पर अभी बम्बार्डिंग होगी, आपको खूब पढ़ने को मिलेगा, अखबारों को, एक्सपर्ट को, जहां जहां से जितनी सारी चीजें मिलेंगे वो आपको परोसने के फेर में पड़ेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नई चीजें बताओ। वो बताएंगे साहब कि दुनिया के इतने देशों में लागू है और वहां सबसे अच्छा है और वहां ये सिस्टम है, फलाना ये सिस्टम है, इस तरह की ढेर सारी चीजें आपके दिमाग में डाली जाएंगी। एक्सपर्ट अपने ढेर सारे आपको ओपिनियन भी देंगे, ढेर सारे डाटा जो होते हैं आंकड़ों का एक तरीके से आपके सामने जमा होना लग जाएगा और आप भ्रमित हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, इसकी भी कटिंग रखो, इसको भी नोट कर लो, इस तरह की परेशानी में आप फंसेंगे। मैं यहां आपको 2 चीजें केवल इसके बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात कि जब कोई टॉपिक इतना हॉट हो, मतलब इतना ज्यादा चर्चित हो जाता है, तो उस पर प्रश्न पूछने की भी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि यह बहुत ही हॉट टॉपिक हो गया है। और दूसरी बात यह कि यह 2013 में इससे इस पर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि दिसंबर में इस पर क्वेश्चन न पूछा जाए, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, जीएसटी पर सीधे प्रश्न न पूछा जाए। लेकिन मित्रों, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, मतलब कहा नहीं जा सकता कि पूछेंगे ही नहीं, तो लेकिन अगर चलिए हम मानते हैं कि प्रश्न पूछ ही लिया जाएगा, या तो अभी जो अभी दिसंबर में एग्जाम होने उसमें, या फिर नेक्स्ट ईयर के मेन्स के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो प्रश्न किस तरीके के होंगे, मतलब ये देखिए, जब तक आप इस बात को स्थिर नहीं करेंगे अपने दिमाग में, तब तक आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं हो सकती है, फिर तो भ्रमित होने वाली होगी, इधर उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और उसमें सब मामला गड्डम गड्ड हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर 2013 का क्वेश्चन सुनाता हूं जो पूछा गया था, क्योंकि हमारे लिए फिर वही एक मार्गदर्शक बन जाते हैं कि भाई इस टॉपिक पर या इस विषय पर, जैसे इकोनॉमिक्स का विषय है तो इकोनॉमिक्स पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोनॉमी पर, या जीएसटी पर ही क्वेश्चन पूछा गया था तो जीएसटी पर किस तरह के क्वेश्चंस बनने की संभावना है, तो इसको आप सिर्फ अनसॉल्व्ड पेपर के जरिए ही अनुमानित कर सकते हैं। तो देखिए, अनसॉल्व्ड पेपर में जो 2013 के अनसॉल्व्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप क्वेश्चन की प्रकृति को देखिए, टॉपिक तो जीएसटी है लेकिन इसके नेचर को समझिए। पूछा गया है, भारत में माल व सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, प्रारंभ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिए, इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए, 200 शब्दों में करना है, डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया, ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजंस फॉर द डिले इन रोल आउट फॉर इट्स रेजिम, 200 वर्ड्स, ये पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको अर्थशास्त्र की जटिलताएं नहीं दिखाई दे रही हैं, बहुत स्पष्ट मूलाधार, मतलब क्यों जीएसटी लागू किया जा रहा है आप वो बता दीजिए, सिंपली 2-3-4 जो रीजन है और बड़े बड़े जो रीजन है, जो बेसिक रीजन है, छोटी मोटी चीजें नहीं, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसको लाने में देरी क्यों हो रही है, क्या आपत्तियां हो रही है, राज्यों की तरफ से क्या एप्रिहेंशन हैं, या और दूसरी एजेंसीज क्या कह रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या स्टैंड है, तो आप उनके क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए कि वो कितना सही कह रहे हैं और कितना बेकार की बात कह रहे हैं, या कह लीजिए कि एक राजनीतिक विरोध होता है तो राजनीतिक विरोध के तहत कर रहे हैं। तो आप देखें कि जो क्वेश्चन का नेचर है इस प्रश्न का, जीएसटी से जुड़े हुए प्रश्न का नेचर, वो बहुत ही जनरल स्टडीज का ही नेचर है, यानी कि सामान्य आदमी से भी अपेक्षा की जाती है कि वो इसके बारे में तो जानेगा ही। तो अभी मित्रों, जब जीएसटी बिल पारित हो गया है और अब आगे जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा उसमें आपको केवल चीजें ये देखनी है कि जनरल स्टडीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस आप अर्थशास्त्री की निगाह से देखने की कोशिश अगर करेंगे तो चीजें जटिल होती जाएंगी और अनावश्यक मुझे लगता है कि मेहनत होगी, कोई फायदा नहीं होगा उससे, दिमाग फालतू की चीजों से भर जाएगा। और कभी जब चीजें बहुत फालतू की हो जाती हैं ना, तो सच पूछे तो उसे दिक्कतें भी पैदा होने लगती हैं। तो मित्रों, जीएसटी के बारे में मैंने आपको एक तरीके से सतर्क किया है कि बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने के फेर में न पड़े। दो कारण है, पहला तो मुझे संभावना कम लगती है कि दिसंबर में इस पर क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अगर बन भी अगर पूछ भी लिया गया तो बहुत ही सामान्य स्तर का ही प्रश्न होगा, जटिल प्रश्न नहीं होगा। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर, और प्रेस क्लिपिंग्स पर आना क्या है, बात करने का अवसर अब नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप जाकर देख लेंगे वेबसाइट पर जाकर। दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर, और ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। दो मित्रों के ईमेल मिले हैं, चंद्र प्रकाश यादव का आगरा से और शिवमंगल कुमार का, जिन्होंने लिखा है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में लोगों को काफी बता रहे हैं। तो चंद्र प्रकाश और शिवमंगल, आप दोनों साथियों का इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से। तो मित्रों, कुछ दोस्तों के मैं और नाम ले रहा हूं ईमेल लिखने वाले दोस्तों के, उसमें है अभिनव यादव बाराबंकी से, मीनू शादाब अकबर कुरैशी दिल्ली से, सुरेश काशीपुर उत्तराखंड से, चंद्रशेखर यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, प्रद्युम्न मिश्र मऊ उत्तर प्रदेश से, वरुण पांडे, अंबुज शुक्ल, गौरव कुमार, सुषमा कोथे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, दर्पण भारद्वाज और संदीप कुमार लखनऊ से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अब एक बार फिर से सिविल सर्विस प्री में बैठने वाले सभी अपने नौजवान और प्यारे साथियों को मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनकी सफलता के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप सभी को उन घंटों में एक अतिरिक्त क्षमता दे, एक अतिरिक्त शक्ति प्रदान करे और जितना संभव हो सके आपके साथ मौजूद रहे। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। आने वाला सैटरडे और संडे आपके लिए बहुत खुशनुमा हो, बहुत ऊर्जावान हो, बहुत उपयोगी हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब मैं विदा लेना चाहूंगा, अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।